ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, Haribol, Haribol. Hare bol Nitai Gaura, Ya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद नौ अध्याय दस श्लोक संख्या तेईस। एवं क्षिपम धौंसी संधितम उत्ससर्ज बाणम सह वज्रम इव तद्हृदयम् बिभेद असृक् वमन दशमुखे न्यपतत् विमानात् आहा इति जल्पति जने सुकृति सुकृतिव रिक्तः एवं क्षितं दंसे संधितं उत्सर्ज एवं क्षितं दंसे संधितं उत्सर्ज बाणं सवज्रं इव तद्हृदयं बिभेद बाणं सवज्रं इव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृग्वमनदशमुखैर्नृपदाद्विमानात् सोऽसृग्वमन्दशमुखैर्यपतद्विमानाद् दाहेति जल्पति जने सुकृतिवरिक्तः दाहेति जल्पति जने सुकृतिवरिक्तः एवं क्षिपन्धंसि संधितं उत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन्दशमुखैरन्यपतद्विमाना दाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः एवं इस तरह क्षिपन डांटते हुए धिक्कारते हुए धनुषी धनुष पर संदितम तीर चढ़ाया उत्ससर्जा उसकी ओर छोड़ा बाणम बाण सह वह तीर वज्रमिव वज्र की भांति तत् हृदयम रावण के हृदय को विभेद भेद डाला सह वह रावण उसृक रक्त वमन खय करता दशमुखय दशों मुखों से न्यापतत गिर पड़ा विमानात अपने विमान से हा हा हाय हाय क्या हुआ इति इस प्रकार जलपिति दहाते हुए जने सारे लोगों के सामने सुकृति व पुण्यात्मा की तरह रिक्त पुण्यों के चुका जाने पर अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइंट रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शुभोपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार रावण को दिखारते हुए भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण की अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की हाय हाय क्या हुआ क्या हो गया क्योंकि रावण अपने दसों मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार पुण्यात्मा अपने पुण्य के चुका जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिर पड़ता है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है क्षीणे पुण्यम तिलोक मिशन्ति। जब पुण्य का क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुण्य पृथ्वी पर पुनः पृथ्वी पर आ गिरता है। इस जगत के समान सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप उसे इस संसार के भीतर रहना होता है क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूट नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपद मिल गया था किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेषतः भगवान की अपमान करता है तो वह अत्यंत अदम है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिरेगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठें और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहें। सर्वोपाधिर्मुक्तं तत्परत्वं। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर मनुष्य आध्यात्मिक स्तर में सदैव स्थिर रहता है। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा नीच दशाओं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थित रहता है। सगुणान समदीत्येतान भ्रमभूयाय कल्पते, किंतु अपने पद पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा देवनेत्रेणा, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुण के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त आत्मा अपने को उस सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, किसी को ना तो रावण की तरह अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और ना अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानविरांधस्य ज्ञानांजनशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयेऽहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् नैश्चवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराभाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। रामायण की कथा चल रही है, भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में। पहले इस अध्याय के शुरुआत में कहा गया है कि हे राजा, आपने रामायण को बहुत बार आपने सुना है, इसलिए मैं इस रामायण को संक्षिप्त में वर्णन करना चाहता हूँ। वैसे भागवत के 10वें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने सोमवंश और सूर्यवंश के अनेकों अनेकों राजा हुए, वंशानुचरित ये पुराण का एक विषय वस्तु होता है। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च उभय वंशायां चरित्रम परम अद्भुतम। परीक्षित महाराज का 10वां स्कंद का पहला श्लोक है। तो राज्ञां जो राजा हैं उभय वंशायां, दोनों वंश का, दो ही वंश है, चंद्रवंश सूर्यवंश और चंद्रवंश।
तो उधर परीक्षित महाराज ने अपने प्रस्ताव रखा कि चरित्रम परम अद्भुतम, आपने इन राजाओं का चरित्र को अद्भुत तरीके से वर्णन किया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच। बाद में उन्होंने कहा कि तत्रांशे नवतीर्णस्य यदोह धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा। हे मुनिसत्तम, मुनियों में सत्तम, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि आपने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ के रूप में ये भागवत ने प्रस्तुत किया है। भागवत ने प्रत्येक पेज में, प्रत्येक पन्ने में भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन है, तो इसलिए आप मुनि सत्तम हो। अभी मैं तत्रांशे अवतीर्णस्य विष्णुर्वीयाणि संशनः, मैं विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। कौन सा विष्णु? वो विष्णु जिनके अंश विष्णु है, यानी कृष्ण। मैं कृष्ण की लीला को सुनना चाहता हूँ। कैसे सुनना चाहता हूँ? वो कौन है विष्णु और कृष्ण कौन है? जिनके अंश विष्णु है वो कृष्ण है। आगे कहते हैं कि तानिन्यो वद विस्तरात्, विस्तार से मुझे कृष्ण के बारे में सुनाइए। अभी नवा स्कंद में भगवान रामचंद्र के चरित्र में सुखदेव गोस्वामी कहते थे, आपने बहुत बार सुन लिया ना रामकथा, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। संक्षिप्त में उन्होंने कम से कम दो तीन अध्याय कहा, दो अध्याय या तीन अध्याय, लेकिन कृष्ण लीला को इतना संक्षिप्त कर दिया था नवे स्कंद के आखिरी में। नवा स्कंद का जो अगर आखिरी श्लोक देखेंगे, आखिरी में उन्होंने दो श्लोकों में पूरा कृष्ण कथा को समाप्त कर दिया, खाली दो श्लोक। आखिरी दो श्लोक हैं 66 और 67 आखिरी अध्याय का, उसमें कृष्ण हैं वो वसुदेव के सामने प्रकट हुए और अनेकों अनेकों लीलाएं के वृंदावन में और कंस को वध किए और गए द्वारका, अनेकों उन्होंने रानियों से उन्होंने विवाह किया और उद्धव को उन्होंने संदेश दिया, अर्जुन को संदेश दिया और वापस अपने स्वधाम में चले गए। नौवें स्कंद का आखिरी दो श्लोक ये है। भाई परीक्षित महाराज को थोड़ा एंग्जाइटी हो गया, उनको ऐसा चिंता होने लगा, मैं जिस काम के लिए बैठा हूँ इधर दो श्लोक में पूरा कृष्णलीला खत्म। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, तानिन्यो वद विस्तरात्, आप विस्तार से कहिए, एलाबोरेटली, क्योंकि कृष्णलीला को दो श्लोकों में समाप्त करना उचित नहीं है, इट इज नॉट गुड। ये सारे जो नौ स्कंद की जो तैयारी है वो केवल इसी के लिए है ताकि मैं कृष्ण कथा को श्रवण करूं, दसवां स्कंद का श्रवण करूं। इसलिए भागवत के दूसरे अध्याय के दूसरा स्कंद के दसवें अध्याय में कहा गया है, दसमश्च विशुद्धर्थम नवानाम लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेन अर्थेन चंदसा। दशमश्च विशुद्धर्थम, कि दसवां विषय वस्तु जो है आश्रय तत्व, उसका अर्थ को विशुद्धर्थम, उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये नौ विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। और ये पहले के जो नौ स्कंद है भागवतम के, ये नौ स्कंद का केवल एकमात्र उद्देश्य है ताकि हम दसवां स्कंद को और अच्छी तरह से आस्वादन करें या समझ सके, या दसवां स्कंद में हम प्रवेश कर सके। तो परीक्षित महाराज का ये जो निवेदन है कि मैं कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, ये निवेदन को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने पूरा दसवां स्कंद, जो सबसे बड़ा स्कंद है, उन्हें वर्णन किया, कृष्ण लीला का वर्णन किया। लेकिन जब रामचंद्र की लीला चल रही थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तारिण्यो वद विस्तरात्, भले ही दो अध्याय में है विस्तार से कहिए करके उन्होंने नहीं कहा, कि चल रहा है चलने रामलीला। तो राम के जो भगवान रामचंद्र का जो चरित्र है वो भी दिव्य है, वो भी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भी दिव्य है, वो भी अद्भुत है। लेकिन श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं वो ऐसा शीतल हवा के बराबर है जिसके द्वारा ये हमारा जो भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ जो गांव है, जो ये चोट लग जाता है, जो घाव लगता है, जो चोट लगा है तो घायल होता है, तो उसके ऊपर बहुत दर्द होता है, बहुत दुख है, वो दुख को शांत करा सकता है शीतल हवा। जैसे कोई एक बच्चा है उसको चोट लगता है माँ पहले क्या करती है, हवा फूंकती है तो शांत हो जाता है, लेकिन जब वो शांत होता है तब वो दवा ले सकता है। अगर जब शांत रहता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका चोट जो लगा है वो ठीक हो गया, नहीं, उसका जो दर्द है वो थोड़ा सा शांत हुआ बस, वो शांत अवस्था में वो शांति से दवाई ले सकता है। अगर वो एकदम बहुत रो रहा है उस समय माँ अगर दवाई भी देने जाएगी वो दवाई को उल्टी कर देगा, लेगा भी नहीं। जैसे सबसे पहला माँ क्या करती है, उसको शांत करती है शीतल हवा से, वैसे ही भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं वो ऐसी शीतल हवा की बराबर है जिसके द्वारा हमारे जो भौतिक गलमश है, जो भौतिक संसार की वजह से जो दुख आ रहा है वो दुख जो है थोड़ा शांत हो जाता है। तो अंततः उस शांत अवस्था में कौन ले क्या ले सकता है, वो कृष्णलीला नामक दवाई को वो ले सकता है। क्योंकि दसवां स्कंद में जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहा कि मैं एक आई एम पेशेंट निवृत्ति तर्शे रूपये माना धोषदात सूत्र मनोविरामात, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत दसवां स्कंद का। चार कारण सुनाते हैं परीक्षित महाराज, मैं कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूँ। ये चार कारण में सबसे पहला कारण ये है कि मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में, क्यों, क्योंकि ये जो कृष्ण कथा है ये दवाई है। निवृत्ति दर्शे रूपये माना भवौषधात, औषधि है। और मैं कौन हूँ, एक पेशेंट हूँ, आप कौन है, एक डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर के द्वारा ही दवाई लिया जाता है, अपनी मनमानी दवाई नहीं लिया जाता है। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये भवरोग के द्वारा पीड़ित हूँ, तो इसलिए मुझे आप क्या दवाई दीजिए, कृष्ण कथा नामक दवाई आप दीजिए। तो कृष्ण कथा जो दवाई है और भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं वो क्या है, ऐसे शीतल हवा के बराबर है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है भले ही भौतिक दर्द है कुछ भी हो अपने आप मिट जाता है। इसलिए लोग जो है राम कथा को ज्यादा सुनना चाहते हैं। राम कथा सुनने में क्या आता है, बहुत आनंद आता है और साथ साथ में वापस जैसा के वैसे रह सकते हैं। वैसा देखा गया है। लेकिन कृष्ण लीला इतना आकर्षक है, अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है तो उसका भौतिक संसार भौतिक जीवन जो है नाश हो जाता है। तो भौतिक जीवन नाश हो जाता है। इसलिए अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं राम के मंदिर में जा रहा हूं तो माता पिता ज्यादा कुछ बोलते रहिए। अगर कोई माता पिता सुनते हैं कि बच्चा कृष्ण के मंदिर में जा रहा है तो जाना बेटर है कि उधर साधुओं से मत मिलना उधर। और ज्यादा निकट दोस्ती हो गया तो तकलीफ हो जाता है, क्योंकि कृष्ण ऐसे है, उनका लीला ही कृष्ण कृष्ण लीला कोई अंदर नहीं है। तो इतना उसके अंदर वो है कि अगर कोई व्यक्ति उसको सुन लेता है, कृष्ण का लीलाओं को सुन लेता है, कृष्ण के भक्त में भी आ जाता है, उसका निश्चित रूप में उसका भौतिक जीवन खत्म होना ही है। अगर उसको भौतिक जीवन नाश नहीं हो रहा इस कारण अभी भी कृष्ण का कृपा नहीं मिला है। तो रामचंद्र का लीला जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो थोड़ा लीलाएं भी मर्यादा वाले है। तो राम लीला सुन के ये भौतिक जगत का जो ताप है वो थोड़ा सा एसी जैसा लगता है, एसी में बैठे ना, इट इज लाइक दैट। लेकिन बुखार कम नहीं होता है। जो भौतिक जीवन या भौतिक लालसा जो है वो आ सकती है, वो कम नहीं होता है। तो इधर हम सुन रहे हैं क्या है, रामचंद्र की लीलाओं में, अभी सारे लीलाओं को कुछ ही श्लोकों में, या रामचंद्र सीता का अपहरण, कैसे कैसे सुग्रीव के साथ उनका दोस्ती हुआ, कैसे उन्होंने रामचंद्र सारे सेनाओं को लेके वो लंका पहुंचे, युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, सब करीबन 20 श्लोक में वर्णन हो गया है। अभी 23वां श्लोक, ये 23वां श्लोक का महत्व यह है कि इसी श्लोक में रावण का वध हो गया, रावण का वध 23वां श्लोक में हो गया, जिसको रामायण में 3 अध्याय में वर्णन किया गया है वो 1 श्लोक में भागवत में वर्णन किया गया है, 3 चैप्टर्स। मैं वही रामायण अभी खोल के पढ़ रहा था, मैंने देखा ये जो पूरा प्रसंग है ये पूरा 3 अध्याय, रावण को राम ने कैसे वध किया उसका पूरा 3 चैप्टर्स है, कम से कम 40-50 श्लोक, मतलब कम से कितना श्लोक हो गया, 100 के ऊपर श्लोक हुआ। जो रामायण में जो 100 के ऊपर जो श्लोक है उसको भागवत में 1 श्लोक में वर्णन किया गया है। यही अंतर है पुराण में इतिहास में, पुराण और इतिहास में अंतर क्या है। पुराण जो है दोनों वंश सूर्य और चंद्र वंश के सारे राजाओं का वर्णन है, जहां जहां एक प्रमुख राजा होते हैं उनका उनका वर्णन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे सूर्यवंश की राजाओं में सबसे प्रमुख राजा हुए भगवान रामचंद्र, तो उनका वर्णन दो अध्याय में, बाकी राजाओं का वर्णन दो श्लोकों में, कुछ लोगों का वर्णन एक अध्याय में हुआ है। लेकिन भगवान रामचंद्र की जो लीला है वो थोड़ा विस्तृत है, वो प्रसिद्ध है, ये पुराणों की शैली है। पुराणों में निश्चित रूप में सारे राजाओं का नाम होना चाहिए, सूर्य और चंद्र, भले ही एक लाइन में सही उसका पुत्र यह है इसका पुत्र यह है होना चाहिए, उल्लेखन तो होना चाहिए, ये पुराण है। लेकिन जब एक विशेष राजा होते हैं जिनका उल्लेखन उस पुराण में नहीं हो पाता है, तब इतिहास की रचना होता है। इतिहास और पुराण में यही अंतर है। इतिहास में एक ही विशिष्ट राजा का विशेष उल्लेखन रहता है। जैसे सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र के लिए इतिहास क्या है, रामायण। चंद्रवंश की राजाओं में एक विशेष राजा हुए भगवान कृष्ण, उनके लिए क्या हुआ, महाभारत। इसलिए रामायण और महाभारत क्या है, इतिहास। तो रामायण और महाभारत इसी इतिहास का है। उसके बाद और एक प्रकार का ग्रंथ आता है जिसका नाम है काव्य। काव्य का विशेषता क्या है, इतिहास में जैसे कि वर्णन किया गया है भगवान रामचंद्र जो है वो इतने सारे सेनाओं को लेके गए और रावण के ऊपर प्रहार करने गए, देवता लोग भी थे, वो थे वो थे, सब वर्णन रहेगा इतिहास में। लेकिन कोई प्रश्न पूछेगा कि वो जो जगह था उसका वातावरण कैसा था, जब इंद्र आके पुष्प वृष्टि करने लगा तो इंद्र कौन सा कपड़ा पहना था, और जो जब ये वानर की सेना चल रही थी आवाज कैसे आ रही थी, अगर कोई प्रश्न पूछे तब उसका जवाब मिलता है काव्य में, जिसको हम साधारणतः बोलते हैं ड्रामा, इसको ड्रामा बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड काव्य। इसलिए पुराण, इतिहास और काव्य। और जितना आप भगवान की लीलाओं को विस्तार करते जाओगे उतना उनका विस्तार है। इससे स्वयं व्यासदेव 18 पुराणों का रचना करने के बाद उन्होंने एक एक पुराण के लिए उन्होंने एक उपपुराण का रचना किया, और एक एक उपपुराण के लिए उन्होंने उपाख्यान का रचना किया। तो अगर कोई कहे कि ऐसा क्यों है कि श्लोक में संक्षिप्त क्यों है, भागवत और भगवान के संबंध कोई भी लीला है, कोई भी शब्द है, वो अनंत है। अनंत होने के नाते आप पूरा भगवान की लीलाओं को एक शब्द में संक्षिप्त कर सकते हो, एक श्लोक में वर्णन कर सकते हो, हजार श्लोकों में वर्णन कर सकते हो, हजार ग्रंथों में वर्णन कर सकते हो। ऐसे भागवत के विषय में कहा गया है, हमारे पास जो नरलोक में अभी उपस्थित भागवत है ये 18,000 श्लोकों की भागवत है, लेकिन यमराज के पास जो श्लोक है वो भागवत है, उनके पास 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 वर्सेस। तो हमको ये विचार करना चाहिए भगवान की जो लीलाएं हैं या उनका वर्णन जो है, ग्रंथ भी, ग्रंथ के द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे भगवान कृष्ण लीलाएं जो हैं ये इस प्रकार जो भगवान ने किया करके कोई ग्रंथ में नहीं है, तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनी काइंड ऑफ पास्ट थिंग्स। कभी कभी अनेकों ग्रंथों में अलग अलग प्रकार वर्णन मिलता है। रामायण में एक वर्णन मिलता है भगवान रामचंद्र लीला, भागवत में वही रामायण का कुछ थोड़ा सा अंतर मिलता है, और कोई पुराण में जाइए रामायण का वर्णन कुछ और तरीके से मिलता है, और अन्य बड़े बड़े भक्त जो भगवान रामचंद्र के, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तमिल भाषा में कंब रामायण बड़े प्रसिद्ध रामायण है, जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस बड़े प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कंब रामायण बड़ा प्रसिद्ध है। तो भगवान रामचंद्र ने उनको इस प्रकार की लीला को दर्शाया तो उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है। तो अलग अलग जगह हमको ये रामायण क्यों मिलता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी लीला है अनंत है। जैसे एक मणि है, एक मणि या वज्र है, डायमंड है, आप उसको एक तरीके से देखोगे तो कुछ और तरीके दिखाई पड़ेगा। कोई और उसको देखता है तो बोलता है नीला, इधर से देखो लगता है पीला, कोई और देखता है बोलते नहीं ये लाल है, लेकिन है कौन सा है, एक मणि है। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जी लीला है वो भी मणि जैसा है। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग अलग जगह से देखते हैं, तो भगवान अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं, लेकिन है वही रामचंद्र है, वही लीलाएं। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन आता है कि ऐसा कैसे भगवान रामचंद्र लीला जो है हमको इधर एक प्रकार प्राप्त होता है, उधर कहीं और एक प्रकार प्राप्त होता है, ऐसा क्यों है? उसका कारण यही है, इट इज द रियलाइजेशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों की अनुभूति, और भगवान ने जिस प्रकार उन भक्तों को दर्शाया है उस हिसाब से है। ये महान भक्त हुए दक्षिण भारत में रामदास करके, भगवान रामचंद्र ने उनको ऐसा दर्शन दिया। कैसा दर्शन दिया? वैसे भगवान की जो शक्ति है, भगवान के जो लेफ्ट साइड में रहती है, लेकिन उनको दर्शन दिया उनके राइट साइड में दर्शन दिया। उधर जाके बोलते कह रहे ऐसे कैसे है, सीता जी है भगवान रामचंद्र के राइट साइड में कैसे हैं? लेकिन उस भक्त को उन्होंने इस प्रकार दर्शन दिया, भद्राचलम करके एक जगह है, उधर उस प्रकार है। तो भगवान राम सिंह लीलाओं को हम सीमित नहीं कर सकते, इट इज अनलिमिटेड। तभी इस श्लोक में जाके देखेंगे कि भगवान ने बाण चलाया, रावण को वध किया, बस उतना ही है। लेकिन थोड़ा सा उपमा उपमेय बहुत सारे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। एवं एवं मतलब इस प्रकार क्या किया? क्षिपन, क्षिपन का अर्थ है कि निंदा करना, उनको डांटना। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान रामचंद्र क्या कहते हैं कि तुम जो कौन है, एक विष्ठा जैसे हो। अब देखिए रावण को अगर कोई बोले तुम विष्ठा जैसे हो, रावण का क्या हालत हुआ रहेगा? देख तो भगवान रामचंद्र रावण को कहते तुम एक विष्ठा जैसे हो, यू आर लाइक ए स्टूल। दूसरी बात, और तुम कुत्ता हो, सीधा सीधा भाषण में कहा। तो बाद में कहा कि क्योंकि नरभक्षी हो तुम, मेरी अनुपस्थिति में तुमने क्या किया, मेरी पत्नी को चुराया। जैसे कुत्ता ऐसे ही करता है, घर का दरवाजा खुला हुआ है, अगर आप उस घर में नहीं हो, कुत्ता जाता है और कुछ चुरा के जाता है। तो उसी प्रकार कि मैं जब घर में नहीं था, मेरी पत्नी को तुमने चुराया। अगर सच में तुम एक राक्षस होता तो इसलिए राक्षसों में भी अदम हो, अस्तित्व में राक्षस का विष्ठा हो, राक्षस का भी कुछ स्तर होता है, तुम राक्षस भी नहीं हो, राक्षस का विष्ठा हो, ऐसा उन्होंने कहा। यू आर लाइक द मोस्ट एबॉनेबल ऑफ द मैन ईटर्स, इनडीड यू आर लाइक देयर स्टूल। देयर स्टूल का अर्थ क्या है? यानी राक्षसों की जैसे विष्ठा को त्याग करने के बाद कोई उसको देखता नहीं, उसको त्याग किया जाता है, यानी राक्षसों में के समाज में भी रहने लायक नहीं होते। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है राक्षस होते हैं उनको भी कुछ स्टेटस होता है, लेकिन देवता लोग जो है उनके साथ फाइटिंग करते हैं, वो भी स्टेटस है। अगर मान लो कि कोई आपने किसी के साथ युद्ध किया, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी के युद्ध किया, सामने वाला व्यक्ति है वो भी उतना बड़ा होगा तभी तो युद्ध किया ना। यानी देवता लोग राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, इसका अर्थ क्या है, राक्षस का भी कुछ स्टेटस है। अभी इधर भगवान रामचंद्र उनको कहते हैं तुमने ये जो कार्य किया है सीता को अपहरण करके, तो इससे पता लगता है कि तुम्हारा स्टेटस जो है वो भी नहीं है, राक्षसों का भी नहीं है, राक्षसों का विष्ठा है, तुम राक्षसों के समाज में भी रहने लायक नहीं हो, राजा की क्या कहना, क्योंकि तुमने कुत्ते जैसा काम किया है। रावण ये सुन के उनका हालत क्या हो रहेगा, ये देखिए। केवल पिछले दिन 10 दिन का युद्ध हुआ था रावण और रामचंद्र दोनों का, 10 days war, ये दिन रात युद्ध चला, ऐसा नहीं कि महाभारत जैसा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चलता था, धर्म युद्ध चलता था, जो युद्ध शास्त्र के अनुसार युद्ध चल रहा था वैसा नहीं था। क्योंकि रामायण का राम और रामचंद्र के बीच में युद्ध जो था उसके अंदर कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि उसमें जो भाग लेने वाले लोग थे वो तो राक्षस थे, असुर, और दूसरे शहर में कौन थे, बंदर थे। बंदर की बात छोड़िए, एक रामायण में वर्णन है, तेलुगु भाषा में एक रामायण है, वो भाषा में वर्णन है कि 84,00,000 योनियों के सारे जीव रामचंद्र की सेना में थे। सारे योनियों के जितने भी 84,00,000 योनि, आप समझो 84,00,000 स्पीशीज, सब हर जगह तो कोई ना कोई राजा होता है ना, चींटियों के समाज में भी राजा होता है, तो उन्होंने भी भेजा था चलो रामचंद्र उनको उनके पक्ष लेना है। तो कुछ कीड़े मकोड़े भी आए थे, तो उनके लिए धर्म युद्ध क्या है, देयर इज नो धर्म फॉर देम, वो अपना ही उनका धर्म है। तो जो हमको रामायण प्राप्त होता है कि एक जगह ठीक है उन्होंने केवल बंदरों ने उनका सहायता किया, बंदर ही नहीं 84 लाख योनियों में जितने भी योनियां हमको है उनको पता था कि रामचंद्र जो है रावण के साथ युद्ध चल रहा है, हमको रामचंद्र का पक्ष लेना। तो इधर उधर वर्णन किया गया है कि उस युद्ध में ये सब भाग लेके भगवान रामचंद्र कृपा प्राप्त किए, चीटी भी प्राप्त किया, चीटियों को राजा, मकड़ियों का राजा, सब लोहरे प्राप्त किया। तो इसलिए वो दिन रात युद्ध चलता था। चीटियों के लिए दिन रात क्या होता है, हमारे जैसे दिन रात थोड़ी ना होता है। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी भी कुछ भी हो जाता था। कभी राक्षसों का मृत्यु हो जाता, कभी रामचंद्र के साइड में जो लोग हैं उनका मृत्यु हो जाता था। तो कुछ जब रामचंद्र के पक्ष में जब कुछ ऐसे अन्य योनियों का मृत्यु हुआ राक्षसों का प्रभाव की वजह से, रामचंद्र की मृत्यु होने के समय वो सब आनंद से अपना हंसते हंसते अपने शरीर त्याग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही वर्णन है। ऐसा बहुत सुंदर कुछ श्लोक है हमारे वो टेक्स्ट में थे, 10th स्टैंडर्ड में वो था, तो उसमें ऐसा वर्णन है। तो बहुत जटिल भाषा है तेलुगु, पुराना तेलुगु भाषा में। तो ऐसा वर्णन है कि वो वर्णन सुनते सुनते ऐसा लगता है कि बस अभी जाके रावण को हम भी मारेंगे, रामचंद्र के पक्ष लेंगे, ऐसे उस प्रकार वर्णन है। तो इधर उन्होंने निंदा किया रावण को, इन्होंने ऐसा डांटा। रावण की क्या हालत होती रही, केवल एक ही दिन पहले रावण कितना बेइज्जती हो गया था, रामचंद्र ने रावण को गिरा दिया था रथ से, तब रावण बेहोश हो गए थे। उस समय रावण का जो सारथी है रावण को महल में वापस लेके आया। जब वापस रावण को होश आया तो उनको मालूम पड़ा उनका सारथी वापस लेके आया। रावण जो उनकी सारथी को डांटता है, तुमने उधर मुझे मरने क्यों नहीं दिया, मेरा इज्जत खराब कर दिया। तो सोच रहा है कि मैं उनको बचाया, लेकिन रावण सोच रहा है कि मेरा इज्जत खराब किया, चलो मैं अगला दिन जाता हूं और उनको मारता हूं। तो अगला दिन वापस युद्ध शुरू हुआ, रावण आया। रावण आके बहुत उन रामचंद्र को बहुत चीजें बोलता है, लेकिन कुछ ही शब्दों में रामचंद्र ने क्या किया, रावण को बहुत डांटा। डांटने के बाद अभी बहुत हो गया, तब मातली उनका जो चैरिटी है भगवान रामचंद्र का, राम को कहते हैं, हे राम आप ऐसा लीला कर रहे हो ताकि आपको रावण को कैसे मारना चाहिए वो नहीं मालूम। आपको मालूम है कुछ ही दिन पहले आए थे अगस्त्य और आपको उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था, उस ब्रह्मास्त्र का आप उपयोग करो। ओ वेलियंट वन, वाई आर यू स्टिल कैरिंग आउट द बैटल विथ रावण ऑल दो यू आर अनअवेयर हाउ टू किल हिम। तो भगवान रामचंद्र ने इस बात को सुना, तो सुनते ही उन्होंने क्या किया, तो धनुष लिया। वो धनुष लेके उन्होंने एक बाण उसके ऊपर रखा। वो जो धनुष और वो जो बाण जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, यानी ब्रह्मास्त्र, जो अगस्त ऋषि ने कुछ ही दिन पहले वही ब्रह्मास्त्र को भगवान रामचंद्र को दिए थे। और ये जो ब्रह्मास्त्र कैसे दिखाई पड़ रहा था, जो एक बड़ा सा नाक होता है, सर्प है जो धस रहा है, उसके जैसे दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ये ब्रह्मास्त्र उन्होंने वो बाण के ऊपर रखा, बाण के ऊपर रखते ही सारे देवता लोग देखने लगे, निश्चित रूप में ये जो बाण है रावण को वध करेगा। आगे चलते वर्णन है, उनका जो फेदर्स है, जो बाण के पीछे वो होता है ना पंख होता है ना, उसके ऊपर वायुदेव निर्भर विराजमान थे। बाण के जो टिप होता है उसके ऊपर अग्नि और सूर्य विराजमान थे। और उसका जो भार है वो मंदार पर्वत और मेरु पर्वत जैसा लग रहा था, वो दोनों उस बाण के ऊपर विराजमान थे। अब ये पुराणों की शैली नहीं है, ये इतिहास की शैली है। पुराणों में क्या लिखा है, जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र ने बाण लिया और धनुष के ऊपर चलाया, जैसे इस श्लोक में रचना किया गया, क्या रचना किया गया है, कि एवं भवंसी संदितम उस सर्जा, ने क्या किया, फिक्स दिस एरो संदितम उस सर्जा, उन्होंने अपना बाण को रखा और छोड़ दिया। लेकिन खाली ये शब्द का वर्णन कैसा है, वो बाण का वर्णन चल रहा है अभी, वो बाण का वर्णन ही अभी 4 श्लोक है बाण का वर्णन रामायण में। तो जैसे वर्णन करने के बाद ये बाण का पूरा वर्णन चल रहा है। ये बाण देखते ऐसा लग रहा था कि जब प्रलय होता है वो प्रलय के समय जैसे अग्नि प्रकट होता है वो अग्नि जैसा दिखाई पड़ रहा था, और खास करके अनंत देव के मुख से जो अग्नि निकलता है वो अनंत देव जैसा दिखाई पड़ रहा था। और ये ऐसा लग रहा था ये तो सारे जीवों को खत्म कर देगा एक बाण, खास करके सारे जितने भी उधर हाथी है घोड़े है और जितने भी लोग हैं उन सबको वध करने वाला है। ऐसा लग रहा था कि भगवान रामचंद्र के पक्ष में उनका भी लोग है वो भी मरने वाले हैं। और ये बड़े बड़े जो लोहे के जो दरवाजे उसको भी भेदन करने वाला बाण था, और पर्वतों को उखाड़ के फेंकने वाला बाण था, और इसने क्या किया, ये जो इसका रूप था कैसा था, सुधारुणम बहुत सुधारण, बहुत सुंदर भी था और साथ साथ दारुणम बहुत भयभीत भी था। और ये इसका उपमा किया गया है, ये जो बाण है ये वज्रोपमा वज्र के समान था, जैसे एक विभीषण का कुछ उक्ति है और एक रामायण है। वो रामायण जो है संक्षिप्त रामायण है, लेकिन संस्कृत भाषा में एक तेलुगु कवि ने लिखा था, वो हमारे टेक्स्ट बुक में था, उसमें बहुत सुंदर श्लोक है। तो वज्रोपमा वायु समान वेगा प्रदीयताम दाशरथाय मंत्री, वज्रोपमा वायु समान वेग, उनका बाण जो है भगवान रामचंद्र का इतना महान है कि वो वज्र के समान है। पंचोंगलियां पंच शिरोतिकाय, पता नहीं वो 15-20 साल पहले पढ़ा तो कुछ श्लोक याद है। पंच शिरोतिकाय, ये जो पांच उंगलियां हैं ये बड़े बड़े अतिकाय बड़े बड़े राक्षस के बराबर एक एक उंगली है। रावण तुम सोचते हो तुम्हारे पास ही 10 सर हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र का जो उंगलियां हैं वो भी तुम्हारे सर के बराबर है, उससे भी बड़े बड़े राक्षसों के सर से बड़ा शक्तिशाली है। इससे तुम जल्दी से जल्दी अपनी दाशरथाय मैथिली जो सीता देवी है उनको वापस कर दो, विभीषण की उक्ति है। तस्दित में जो रामायण का अलग अलग जगह जो वर्णन होता है बड़ा अद्भुत है, अगर कोई उसको सुनते बैठेगा घंटों सुन सकता है, कैन गो ऑन हियरिंग इट, शांति से बैठ के सुन सकता है, सारे जो दुख है भौतिक दुख अपने आप मिट जाता है। हाँ तो आगे भी चल रहा है, इट वॉज गिविंग ए पेरिनियल फीड टू वल्चर्स क्रेन्स। हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि ये बाण अगर चलाएगा तो इतना लोगों का मृत्यु होगा कि जब तक ये पूरा जगत रहेगा तब तक ये गिद्ध है अनेकों अनेकों पक्षियां हैं उनके लिए कोई आहार की कमी नहीं रहेगा, यानी इतने लोगों का लाश गिरा पड़ा रहेगा कि इट कैन बी ए पेरिनियल सोर्स ऑफ फूड। जितने वल्चर्स है क्रेन्स है और सियार है राक्षस है उन सबको खाने की चिंता जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब तो मरा हुआ शरीर को खाते हैं। ऐसा लग रहा था साक्षात यमराज है, साक्षात यमराज आए हैं रावण का मृत्यु के लिए। दैट एरो बेस्टोड जॉय टू द मंकी लीडर्स, अन्य जितने भी और लोग थे असुर राम के पक्ष में जितने वानर थे उन सबको आनंद प्रदान करने वाला था। एंड जैसे कुछ असुर जो है उस बाण को देख के उधर ही उनका वो मर गए देखते ही। इट वॉज मेड स्पीडी बाई ट्राइंग वेरियस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल कलर फेदर्स ऑफ गरुड़, गरुड़ के पंख लगे हुए थे, द किंग ऑफ ईगल्स। आगे कहा गया है मेकिंग इट सीक्रेट बाई ए स्पेशल फॉर्मूला एज पर द प्रोसीजर सेक्रीफाइस स्पेसिफाइड इन स्क्रिप्चर्स। और भगवान रामचंद्र शास्त्रोक्त के अनुसार उस मंत्रों को उच्चारण करने लगे, और राम हु वॉज एंडाउड विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ देन फिक्स्ड दैट एरो विच वॉज फोरमोस्ट अमॉन्ग थ्री वर्ल्ड्स केपेबल ऑफ रिमूविंग फियर ऑफ द इक्ष्वाक डायनेस्टी टेकिंग अवे द ग्लोरी ऑफ द एनिमीज बेस्टोइंग जॉय टू वन्स ओन सेल्फ ऑन हिज बो। तो भगवान रामचंद्र ने उसको अपने बाण के ऊपर रखा, अब बाण को धनुष के ऊपर रखा, दस एनरेज राम स्ट्रेचिंग द बो, उन्होंने क्या किया उन्होंने धागा को खींचा खींच के, एंड विद एन अटेंटिव माइंड पूर्ण तरीके से ध्यान लगाते हुए हर्ल्ड द एरो विच कैन टियर ऑफ द वाइटल्स टूवर्ड्स रावण, रावण के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और जैसे उन्हें प्रहार किया दैट एरो विच वाज इनअवॉइडेबल एज अ थंडरबोल्ट हर्ड बाय द आर्म्स ऑफ इंद्र एंड इरेसिस्टिबल एज एमस लॉर्ड डेथ अपॉन रावण्स चेस्ट रावण के रक्षस के ऊपर पर दैट एरो रिलीज विद ग्रेट स्पीड एंड विच वाज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बॉडी टोर ऑफ द हार्ट ऑफ इविल मैन रावण रावण का शरीर को उन्हें फाड़ दिया यदि श्लोक में वर्णन है जैसे वो बाण को लगा तो रावण जो है क्या हुआ बाणम स वज्रमिव तद धर्म्यम विभेदा उनके हृदयम विभेदा उनके हृदय को भेद कर दिया और तब उस समय क्या हुआ वमन तत्श्रिक वमन तो वामन वमन करते उल्टी करना मुखे दसों के दसों मुख से रावण खून उल्टी करने लगा और उनका जो विमानार न्यपदात विमानार उनका विमान से तो गिर पड़ा न्यपदात विमानार मतलब विमान से गिर पड़ा जैसे विमान से गिर पड़ा तो सारे लोगों ने कहा हा 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 करके उच्चारण करने लगे क्या हो गया क्या हो गया और आगे जने सुकृतिव रिक्तः आखिरी लाइन है इसमें सुकृतिव रिक्तः जैसे रावण गिर पड़ा कैसे गिर पड़ा उसका वर्णन है कि सुकृतिवान व्यक्ति होता है वो स्वर्ग से गिर पड़ता है उस प्रकार गिर पड़ा तो पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद इसी के बारे में लिखे कि जो सुकृति प्राप्त करता है यानी कुछ पुण्य कर्म करता है वो पुण्य कर्म जब तक उनका क्षीण नहीं होता तब तक वो स्वर्ग में रहता है और जैसे क्षीण हुआ तुरंत गिर पड़ता है विल फॉल डाउन उसी प्रकार रावण भी गिर पड़ा सार रूप में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों से कोई भी इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता आप कितना भी पुण्य करें या कितना भी पाप करो तो दोनों में कोई फर्क नहीं श्री प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं भगवद्गीता के इतने तात्पर्य में फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य भी पाप है पाप भी पाप है जैसे भगवद्गीता में कहते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः ये जो पाप शब्द का अर्थ क्या है ये पाप शब्द का अर्थ क्या है पुण्य भी है यानी हमने जो पुण्य किया है उसको ही भगवान हर लेते हैं तो इसलिए मान लो कोई कितना भी पुण्य करता है तो अंततः वो भी पाप है क्यों अंततः उसको वापस भौतिक जगत में गिरना ही है उदाहरण रावण है रावण इतना पुण्य किया था कुछ तो किया था तभी तो उसको मिला इतना बड़ा पोस्ट मिला और लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया या खास करके अपराध किया अपराध करने की वजह से क्या हुआ सब कुछ उसका नष्ट हो गया तो पाज लिखते हैं जो भगवान के प्रति अपराध करता है यानी सीधा भगवान के प्रति अपराध हुआ सीता को अपहरण करना का अर्थ क्या है भगवान रामचंद्र के प्रति अपराध किया उस अपराध करने की वजह से रावण का मृत्यु हुआ रावण का उम्र था पूरा 14 कल्प तक उसका पूरा ये था 14 कल्प यानी 14 ब्रह्मा जी के जो पूरा दिन तक उनका आयुष था लेकिन सीता का अपहरण करने की वजह से भले ही उनके अंदर इतना पुण्य था किसके लिए इतना लंबा समय जीने की ये भगवान के प्रति अपराध करने की वजह से आयुष कम हो गया खास करके कोई भी व्यक्ति जो कामुक होता है उसका आयुष कम हो जाता है पूरा रामचंद्र की जो लीला में सबसे बड़ा जो उपदेश रावण से मिलता है क्या मिलता है कि जो व्यक्ति कामुक होता है उसका निश्चित रूप में नाश हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है एवरीथिंग रावण ब्राह्मण था और इतना ही नहीं जब भी देवता लोगों में यज्ञ होता था देवताओं के समाज में मंत्रोच्चारण के रावण को बुलाते थे बोलते रावण को स्पेशल इन्विटेशन देते आप आके मंत्रों को उच्चारण करो रावण का मंत्रों का उच्चारण इतना स्पष्ट था इतना शुद्ध था कि अग्निदेव इतना प्रसन्न हो गए थे तो अग्निदेव जा रहे थे इतना अच्छा उच्चारण कर रहा मैं जाऊंगा इतना अच्छा यज्ञ चल रहा है तब उधर नारद जी ने कहा अग्निदेव को आप जाना जरूर लेकिन आपकी पत्नी को मत लेके जाना तो क्यों यज्ञ में तो सब पत्नी के साथ जाया जाता है तो यज्ञ जो है उधर रावण कर रहा है। अग्नि ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा, और जैसे उधर गया यज्ञ समाप्त हो गया। रावण ने कहा अभी यज्ञ की क्या जरूरत है, अभी आप आ गए आपकी पत्नी के साथ, मैं उनको अपहरण करके लेके जाता हूं। रावण की कम से कम ऐसा कहीं एक शास्त्र वर्णन है 11,000 पत्नियां थी अनेकों अनेकों लोगों से, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट था। तो रावण का जो चरित्र है अच्छे से पढ़ना चाहिए व्यक्ति को। रामचरित्र का चरित्र दूसरी बात है, लेकिन राम रावण का चरित्र पढ़ो, उसे पता लगता है चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, दशो ग्रह जो है उनके इशारे से काम करते थे। हमारा पूरा जीवन जो है ग्रहों के अनुसार कार्य होता है, ग्रहों के अनुसार कर्म, ग्रह जो है हमारे कर्म को, हमारे कर्मों को फल प्रदान करता है। लेकिन रावण जो है इन ग्रहों को नियंत्रण में रखा था, लेकिन फिर भी उनका क्या हालत हुआ। इसलिए भगवान भगवीता के श्लोकों को कोट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मणा दैवनेत्रेण, और अनेकों अनेकों श्लोक भगवदगीता है, भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता में चलती है, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेटीरियली पावरफुल हैज गॉट नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। कोई बहुत अमीर है, बहुत शक्तिशाली है, इसको आध्यात्मिकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। Somebody is materially powerful, that has nothing to do with spirituality. इसलिए भक्तों के जीवन में देखते हैं कोई भक्त बहुत अमीर है, कोई बुद्धिशाली बुद्धिमान है, कोई सुंदर है, ये सब चीजें जो है उनकी भक्ति के साथ कुछ लेन देन नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं जन्मेश्वर शुत श्री विदान मदपुमान नई वार्य तबिदा तो मई तो किंचन गोचरम। तो जन्म बड़े जन्म, रावण का साधारण जन्म तोड़ना नहीं था, बड़ा जन्म था, वेरी ग्रेट ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कभी था रावण का। वो कुबेर को भगा के लंका को ले लिया उन्होंने, कुबेर की पुरी थी, कुबेरस मेरु पर्वत का टुकड़ा था वो, मेरु का जब त्रिकुट गिरी, उसको लंका को त्रिकुट गिरी कहा गया है, और उधर रहने के लिए इंद्र भी तरसता है मैं अमरावती को छोड़ के उधर रहूं, ऐसा जगह था। उधर का जो रेती है वो सोने की रेती है, सोने की लंका मतलब उधर रेती सोना का है, तो एक ही जगह है जहां रेती जो है सोना वो है कैलाश। दो लोगों को छोड़ के रावण सबको गुलाम बना के रखा था, एक है शिव जी और एक ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको मालूम था इनसे वरदान लेना है मुझे। तो ऐसा रावण का क्या हालत हुआ देखिए। इसलिए डोंट बी प्राउड, रावण की जो शिक्षा से हमको बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलता है, अहंकार जो है कभी करने की जरूरत नहीं है। इतना रावण, उनका मृत्यु हो तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, विल गो ऑफ एनी टाइम, डोंट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। और मान लो है भी कुछ क्षमता है, धन है या कुछ बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ होने पर भी ये जानना चाहिए इसमें और भक्ति में दोनों में कोई संबंध नहीं है। भक्ति कुछ अलग वस्तु है, हमारी भौतिक क्षमता जो है वो बिल्कुल अलग वस्तु है। ठीक है, हमारी भौतिक क्षमता को भगवान की सेवा में लगा रहे वो अलग बात है, लेकिन किसी की भक्ति की माप उनकी भौतिक योग्यता के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार नहीं करना चाहिए। ये कितना अच्छा गाता है, इसका अर्थ है बहुत अच्छा भक्त है, ये गलत सिद्धांत है। ये कितना अच्छा प्रवचन देता है, इसका अर्थ है कितना अच्छा भक्त है, ये गलत सिद्धांत है। देखो कितना अमीर है, हाँ, कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, ये गलत सिद्धांत है, क्योंकि डिवोशन इज प्योरली स्पिरिचुअल, बाकी सब मटेरियल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।